अब आगे देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे नबी पर एतराज लगाने वाले ये क्यों भूल गए कि ये नबी खुद नहीं आया, भेजा गया, और ये अल्लाह का फैसला है कि वो इसको भेजे। यहाँ से अगली आयतें दोबारा कुछ अल्लाह ताला की मोहब्बत और जन्नत और जहन्नुम के तस्करे किए। फरमाए तबारक अल्लज़ी इंशा अजाल लका खैरम मिन ज़ालिक, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात। आप नोट करेंगे कि सूरत में बार बार तबारक का लफ्ज आएगा, तबारक मुबारक हो। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मुबारक देता है हमें कि तुम कुरान पढ़ते पढ़ते अब अगले मरहलों पे जाते जा रहे हो और तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आ रही हैं। पता नहीं आप कितनी महसूस करते हैं, और शायद महसूस करें जितनी उतनी ही बरकतें महसूस भी होती हैं। लेकिन हकीकत है कि तबारक अल्लज़ी, अल्लाह की ज़ात वो है जो अपने कलाम के साथ जुड़ने वालों की ज़िंदगी में हकीकत में बरकतें भेज देता है, और उसके बाद एक इंसान कभी भी अपने आप को महरूम नहीं समझता, कभी खुद पे रहम नहीं खाता। तो फरमाया कि बड़ा बाबरकत है वो कौन जो अगर चाहे तो बना दे आपके लिए बेहतर, इससे किससे बेहतर, ये जो पीछे बातें कर रहे थे कि बाग हो और आपका महल हो, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी ऐसे बागात जिनमें रवां हो नहरें उनके नीचे, वयजअल्लक कुसूरा, और बना दे आपके लिए बड़े बड़े महल्लात। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? और सच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये बात कही थी। रिवायत सुना देती हैं आपको। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरद अलैया रब्बी, मेरे रब ने मेरे सामने ये चीज़ पेश की कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह या रब्बी, नहीं है मेरे मौला, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन सैर होकर खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं और एक दिन भूखा रहूं और सब्र करूं। आज हमारे भी ये ख्यालात हैं कि अल्लाह के नबी अगर चाहते तो महल, तो महल जन्नत की चीज़ें दुनिया में आती, लेकिन अल्लाह की ज़ात बंदे को इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि जिनकी नज़र जन्नत की और आखरत की चीज़ों पे होती है उनको दुनिया के महल और ये चीज़ें को बहुत बड़े नहीं लगते। मिल जाए दे दे अल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें इनका दिल नहीं अटका रहता। तो वो रब जो जन्नतों में नहरें चलाएगा, क्या दुनिया में नबी को ऐसे बाग नहीं दे सकता, ऐसे महल नहीं दे सकता कि जिनके नीचे नहरें बह रही हों? हमारा ईमान है कि दे सकता है, लेकिन फिर वक्ती तौर पे क्यों ना दिया? एक तो हमने देख लिया कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश ही नहीं थी, आपको गुरबत पसंद थी। हदीस में आता है कि आप चाहते थे आप गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद करते थे, क्योंकि आपको पता था ना कि जन्नत में गरीब लोग जल्दी जाएंगे। एक रिवायत में आता है कि जन्नती जो गरीब होंगे दुनिया में, महरूम लोग होंगे, वो दूसरे लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। इसको अगर आपने समझना हो ना, तो आप एयरपोर्ट का मंजर ज़हन में लाइए, वो शख्स जिसके पास थोड़ा सामान है या हैंड फ्री है वो तो फौरन चल पड़ेगा, एक थोड़ी सी देर में उसको बोर्डिंग पास मिलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े सूटकेस लेके आया होगा वो तुलवाएगा ना। इसलिए कुरान पाक और हदीस से ये मफहूम में बहुत वजाहत से मिल जाता है कि एक ही जैसे अमल करने वाले, यानी दो लोग बिल्कुल एक जितनी नेकियां, एक ही दिन पैदा हुए, बिल्कुल बराबर डीड्स हैं उनके। जैसे मिसाल है, बाज़ दफ़ा पेपर्स में बहुत सारे लोगों के 25 में से 24 नंबर आ सकते हैं या 25 में से 25 आ सकते हैं। तो इस किस्म के लोगों में भी जो लोग गुरबत में होंगे वो दूसरे से पहले जन्नत में जाएंगे, सुभान अल्लाह। तो जिनको आसानियाँ तलब मतलूब हों उनके साथ फिर इस तरह का मामला भी अल्लाह ताला फर देगा। एक और रिवायत में भी इसी किस्म के अल्फाज आते हैं। आपने फरमाया कि मुझ पर मेरे रब ने पूरे बतहा, यानी मक्का और उसके पहाड़ों को सोने का बनाने की बात की, यानी कि अगर आप चाहें तो मैं इन सबको बना दूं। मैंने अर्ज किया, नहीं ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो एक रोज पेट भरा खाना मिले और एक रोज मैं भूखा रहूं। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ फिरा करते। सुभान अल्लाह। देखिए जो रब ना फरमानियों पे दे सकता है, क्या वो फरमा बरदारियों पे नहीं देगा? देगा, दे सकता है, लेकिन ये कुछ है ही नहीं। जिस चीज को लोग सोना कहते हैं, दीन वाला उसको क्या कहेगा? पीतल, क्या बड़ी बात है, लोगों का तो दिल उसमें पड़ा रहता है, इसको कुछ ना हो जाए, इसको ये ना करे, और इसको पाने के लिए نافرمانیاں اور فرما برداریاں برابر کر دی جائیں. جب آپ کو جنت کی چیزیں نظر میں آتی ہیں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. بس اس بات کو کہتے ہوئے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی مثال آئی, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے بہت نپے تلے پیسوں میں کپڑوں میں گزارا کرتی تھیں, آج کل کا تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. بہت ساری روایات بدل گئیں اور مختلف جگہ ہوگی بھی آج نہیں بھی ہے, لیکن عموماً شادی سے پہلے ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور پیسے بھی کم ہوتے ہیں, کپڑے وغیرہ بھی کم ہوتے ہیں. اور ہر بات پہ کیا امید دلائی جاتی ہے شادی کے بعد کرنا, اچھے کپڑے, زیور, کھلے پیسے, آزادی. اسی لیے بھی بعض لڑکیاں شادیوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ کب ان پابندیوں سے جان چھوٹے. لیکن آپ سوچئے کہ وہی کپڑے جو پہلے لڑکیوں نے بڑے سنبھال سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں نا, بہت پہننے والے فنکشنل کلوتھنگ, کبھی شادی کے بعد ان کو اپنے گھر میں آ کے وہ پہننے پڑے تو وہ نائٹ سوٹ کے طور پہ پہنتی ہیں, قدر کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ اس سے اچھے دکھ کے. تو بس مثال تو پتہ نہیں کیسی لگی آپ کو, لیکن بات سمجھ جائیے کہ جس کو جنت کی چیزیں دکھتی ہیں نا, وہ اپنی دنیا کی قیمتی چیزوں کو بھی سینے سے لگا کے اور ان کو بت کی طرح سجا کے سنوارتا ہی نہیں رہتا, یا وہ استعمال کرتا ہے یا نہیں رکھتا. لیکن جن کو جنت کی چیزیں نہیں دکھ رہی ہوتی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے اپنی نمازیں ضائع کر دیتے, اپنی عبادات ضائع کرتے اور انہیں میں کھو کر بعض دفعہ اپنے دین کو کمزور کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے دیتا, کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کو پسند ہی نہیں کیا. قابل کسبو بساتی, اصل بات یہ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی کے پاس محل ہے یا کوٹری ہے یا آپ کے خزانے ہیں یا آپ تہی دامن ہیں. اصل بات یہ کہ بلکہ سب بساتی انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو. وَاتَدْنَ لِمَنْ كَسَّبَ بِسَاعَتِ سَعِيرًا, اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ. جھٹلانے کا انجام آگ. بعض کہتے ہیں اس گھڑی کو جھٹلاتے ہیں, اسات کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, تو سات کا معنی گھڑی بھی ہوتا ہے اور وقت بھی, اور ال اس پر عہد کا ہے, یعنی وہ مخصوص کھڑی جو آنے والی ہے جس کے بارے میں ہم تمہیں بتا چکے. قیامت کو اسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ گھڑی کا وہ وقت ہے جو آنے ہی والا ہے, اللہ سب کو کھڑا کرے گا. اور یاد جو باتیں کر رہے ہیں بے بنیاد باتیں, اندر سے اس بات کا بول کھول رہی ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں یہ قیامت آنی ہے. یہ غلاموں کی باتیں تو بیکار باتیں تھی, بازاروں میں چلنا پھرنا, کمانا کھانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. فرشتوں کے ساتھ چلنے کی باتیں, محل کی باتیں, باغوں کی باتیں, یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ بل کذبوا بساعتی, انہوں نے قیامت کا انکار کیا. بل وعددنا لمن کذب, نوٹ کیجئے, یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا وعددنا لہم, بالکل سادہ تھا. ہاں ہم نے ان کے لیے تیار کیا, دوبارہ ان کی وہی صفت پیش کی کہ لمن کذب بساعتی, کہ ہر قیامت کو جھٹلانے والے کے انجام میں آگ ہے. کیسی ہوگی وہ آگ؟ اب اس کو آپ نے اپنی امیجینیشن سے دیکھنا ہے اور دل میں کہنا ہے کہ اللہم لا تجلنا منہم اور اللہم اجرنی من النار, اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے, کیونکہ وہ جہنم اس سے بہت زیادہ شدید ہے جتنا ہم اس کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بس ایسی آئے گی اور ہم ہنس کے دکھا دیں گے, کہا نہیں وہ آگ کیسی ہے. اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, جب وہ آگ دیکھے گی ان کو دور سے تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور اس کا چنگھاڑنا. غور کیا آپ نے ظاہر آپ کیا مطلب سوچے ہوئے تھے اس کا؟ کچھ لوگ شاید کہ یہ آگ کو دیکھیں گے. یہاں گرامر کی بھی بات ہے, تجوید کی بھی بات ہے, معنی کی بھی بات ہے. رأتہم تا کس چیز کی ہے؟ تانیس, تانیس یعنی مؤنث. مؤنث کون ہے یہاں؟ ہم تو آگے مذکر کا رہا ہے تو مؤنث ہے. دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے. جو علم سیکھ کے قرآن کو پڑھیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ ہدایت پھیلائیں گے, اور جو اس کے برعکس کریں گے اس کے الٹے سیدھے ترجمے کر کے تفسیریں کراتے ہوئے بھی لوگ دیکھے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. وہ آگ ان کو دیکھے گی. رأتہم, کبھی ترجمہ نہیں غلط ہوگا اگر آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا تو, ورنہ اکثر غلطی لگتی ہے اس آیت پہ کہ وہ دیکھیں گے آپ کو, کیونکہ بات جو چل رہی ہوتی ہے ہم اپنے ذہن کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں یہ نہیں آپ کو دیکھ رہے بلکہ آگ ان کو دیکھے گی. ایسا لگے گا हम पीछे पहले पारे में बिल्कुल बनी इसराइल के किस्से जहां चल रहे थे उसमें एक जगह पढ़ के आए अस्हाबुल जहीम, और भी जगह आता है कुरान पाक में। और जहीम का मानी होता है घूरने वाली, जहमा कहते हैं घूरने को। तो यहाँ बात आ रही है रात हम की, दोनों को मिला लीजिए तो पता क्या चला कि क्यामत के दिन मैदाने महशर में आग लोगों को घूर घूर कर देख रही होगी। आज अगर अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लें जो कल देखने वाले हैं तो आज ही अपने आप को बचा लें कि आग इनको ताड़ेगी। सही रिवायात में भी इसका हमें मजमून मिलता है कि क्यामत के दिन जब आग जहन्नम को लाया जाएगा तो वो भूखी होगी और नुकेलों में होगी, 70,000 नुकेल डाले होंगे, और अगर अल्लाह ताला उसको खुला छोड़ दे तो नेक और बद सबको खा जाए। इतनी भूखी है वो, हर दिन अल्लाह से खाना मांगती है। आप सोचे शेर भूखा और इसको लाल ले आया जाए इंसानों के पास और खुला छोड़ दिया जाए तो कौन बचेगा। बिल्कुल यहाँ वही बात है कि क्यामत के दिन जहन्नुम भूखी होगी, ताड़ेगी। समेउ लहा, वो अब सुनेंगे उसका। लहा क्या है? औरत के लिए ना फीमेल, मुअन्नस की ज़मीर है तो आग है। इसलिए देखिए कि खाली भी आप तर्जमा याद कर लेते हैं ना उससे बात बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप बात को समझ के करते हैं तो इंशाल्लाह कभी नहीं गलत बातें करेंगे। कुछ लोग बड़े परेशान होते होंगे जब मैं ये छोटी छोटी बातें बीच में बताती हूँ, तो आपकी परेशानी दूर करूंगी कि फिक्र ना करें, कम ना करें। अभी पहली दफा अगर आप पढ़ रहे हैं बगैर ग्रामर के या थोड़ी ग्रामर आती है नहीं है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दुआ बस ये करा करें इन बातों को सुन के कि अल्लाह हमें बार बार पढ़ने के मौके दे, हम एक्सीलेंसी के दर्जे पे चले, तजवीद हर चीज अच्छी कर ले, और ये एक दिन में नहीं होता। चले हैं चलते ही जाइए, कोई कटने का कोई पलटने का फैसला ना करें कि बस जान छुटेगी पढ़ के खत्म, बल्कि असल बात तो है कि कुरान उनके लिए है जिनका कुरान 30 बारों पे खत्म नहीं होता, 30 बारों पे शुरू होता है, फिर उनका अमल चलता है और फिर असल तलब लगती है। मैं कई ऐसे साथियों को जानती हूँ पिछले 5-6 साल से तो वो सिर्फ हमारी ही क्लासेस में मुसलसल आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी एक सिस्टर है फरहाना, मुझे नहीं याद कब वो पहली दफा मिली थी, हमारे पूरे ऑनलाइन क्लासेस की समझे के डे वन जो मैं अपने जहन में सोचूं तो मुझे उनका नाम फरहाना यास्मीन है, फरहाना जबीन है गालिबन या यास्मीन है, तो वो याद आती है। हर कोर्स में वो है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको और तौफीक दे, मैं एक लफ्ज पूछू ना तो फौरन उनका मैसेज आता है क्लिप पे। इससे पता चलता है कि कौन पास बैठ के सुनता है कौन चलता है। हम जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो हमारी कई चीजों से हमें खुद ही पता चल जाता है कि कौन खुद सुन रहा है, कौन गोद में बच्चों को लेके सुन रहा है, कौन चलते फिरते सुन रहा है, कौन लिख रहा है। और उसका मैंने देखा है 1 मिनट नहीं लगता, मैं खुद सोचती हूँ कि सुबह की क्लास में भी साथ ही बैठ के सुन रही थी अभी भी, क्योंकि एडमिन भी है रूम में प्लेइंग का काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे हाल है मोर देन 20 आवर्स उनका कंप्यूटर जो है वो अल्लाह के कलाम को पेश करता है। अल्लाह करे कि उनके लिए बेहतरीन सदका जारी हो, लेकिन ये चीजें सीखते हैं। और अब मैंने खुद उनमें जमीन आसमान का फर्क देखा। अच्छी बात है इसलिए जिक्र कर रही हूँ, इतनी बेहतर हो गई उनकी तजवीज जब वो शुरू में हमारी क्लासेस में आई थी, उनकी हर चीज बहुत अच्छी थी, डेडिकेशन फहम भी बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ इसलिए उनको माइक पे हम नहीं बुलाते थे कि वो खुद कहती थी और हमें भी एहसास होता था कि तजवीज अच्छी नहीं, और अब माशाल्लाह उनकी तजवीज पहले से बहुत अच्छी हो गई। ये तह लगती है, दुआ करें कि सारी जिंदगी हम इस चीज पे लगा के देखें, यकीन करें आप जिंदगी का असल राज पा लेंगे। वो कहते हैं ना कि सुराग़े जिंदगी पाले, डूब जा डूब के मिलती हैं चीजें। अल्लाह कहते हैं वो जहन्नम देखेगी और समेउ लहा, ये अब सुनेंगे उस औरत का, वरना अपोजिट मानी भी तो आप कर देते ना कि वो सुनेगी उसको या वो सुनेंगे उसको, कौन किसको सुन रहा है, तुक्के चल जाते हैं अक्सर। लेकिन दुआ करें कि हम इनकी रूह में जाएं, क्या सुनेंगे उसका, कौन चिल्ला रहा है, जहन्नमी या वो। भक्ति लग सकती है ना कि ये तो जहन्नमियों के चिल्लाने की बातें हो रही है, नहीं अभी जहन्नमियों की बारी नहीं आ रही, अभी बारी आई है तो किसकी आई है, जहन्नम चिल्ला रही है तगय्युदं व ज़फीरा। अल्लाह अकबर, तगय्युस गैस है गुस्सा, गजब और गुस्सा कहते हैं ना वही लफ्ज है, और साथ ही साथ ज़फीरा चिंघाड़ना, कहते हैं कि शोलों के भड़कने से ऐसी आवाज पैदा होगी जैसे कोई गैज़ो गजब से बुड़बड़ा रहा हो। जरा इमेजिन करें, तस्वीर में लिखे हैं कैसा लगेगा, अल्लाह ना करे कोई वहां जाए। कभी बड़े बड़े बॉयलर्स कहीं जलते हुए देखे हो ना, फर्नेस होता है। आई रिफाइनरी कराची में, तो हम जब छोटे थे तो जाते थे उधर से करीब, जब अपने वालिद की फैक्ट्री में, तो रास्ते में एक रिफाइनरी आती है बहुत बड़ी, जहाँ एक पेट्रोलियम साफ होता है। इतना उसके करीब से गुजरते हुए भी खौफ आता था, इतनी भाप धुआं। और मैं अक्सर सोचती थी, अक्सर मेरे वालिद भी कहते थे कि इस रिफाइनरी में इतना इस वक्त ऑयल है और इतना प्रेशर है कि खुदा ना खास्ता अगर ये फटे तो कराची का कितना शहर जो है वो तबाह हो सकता है। तो वो मासूम बच्चों के जहनों में जैसे चीजें होती है ना, तो शऊर में ऐसी चीज बसी हुई थी कि कभी भी वहां से गुजरना तो खौफ आना। और जैसे अपने बाप के भाई के किसी के जाने का फिक्र है ना, तो लाशौर में ही होना कि वो वहां से खैर से गुजर जाए, कुछ हो ना जाए। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी फर्नेस इतना चले, तो जिसके अंदर इतना ईंधन, जिसके अंदर वकूदुहन्ना सुवल हिजारा हो, वो कितना चलेगी। ज़फीरा चिल्लाएगी, शोर करेगी, ऐसी सांस के फूलने की आवाज जिससे पसलियां फूल जाएं, इसको ज़फीर कहते हैं। कभी किसी का नाक बंद हो तो जब वो सांस लेता है, या सोए हुए शख्स के जो खराटे होते हैं उसी को सोच लें और कई हजार गुना बढ़ा लें, ऐसी जहन्नुम के अंदर से आवाजें आएंगी। गधा जब हिनहनाता है तो इसके पहले हिस्से की आवाज को ज़फीर और आखिरी हिस्से की आवाज को शहीक कहते हैं। ये भी लफ्ज आएंगे दोनों इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ज़फीर और शहीक। जहन्नुम एक दफा सांस अंदर खींचती है, रिवायात में तो उसकी वजह से दुनिया में सर्दी का मौसम आ जाता है, एक दफा सांस बाहर खींचती है जिससे गर्मी का मौसम आता है। तो ये अंदर खींचना और बाहर लाना, इन दोनों चीजों को जोड़ें तो फिर आप ज़फीर व शहीक को समझ सकते हैं। इस तरह जहन्नुम चीखेगी, वइज़ा उल्कु मिन्हा मकानन दय्यकन, और वो जब उसमें डाले जाएंगे तंग जगह में। पहले जहन्नुम के जोश मारने की बात थी, अब जो अंदर जा रहे हैं उनकी कैफियत बताई जा रही है कि जब उनको फेंका जाएगा उस आग में किसी तंग जगह में, अब इनकी हड्डी पसली ठीक होगी। ये मकानन दय्यका को सोचना ना, तो मेरे जहन में आता है वाफल मेकर या टोस्टर होते हैं ना, जिसमें आप सैंडविच को रखते हैं, अच्छी खासी बड़ी नरम फ्लफी सी ब्रेड, आप उसके अंदर चीजें डाल के आप टोस्टर में डालते हैं या सैंडविच मेकर में, तो दोनों तरफ से उसको फिर प्रेस किया जाता है। बस जब अंदर जो चीजें डाली होती हैं वो भी साइडों से निकलती हैं, बस उसको समझ लीजिए कि मकानन दय्यकन उसमें डाला, और डाला किस कैफियत में, मकरनीना जंजीरों में बंधे हुए। मुकर्रन की जमा है ये, मुकर्रनीन मुकर्रन की जगह, काफ रा नून जकड़े हुए, जंजीर और सलासिल अगलाल तौक उनके गलों में, बिल्कुल वही तसव्वुर आ रहा है। बड़ी तंग जगह में ठूंसने का अंदाज है। दाउ हुनालिका सुबूरा, वो पुकारने लगेंगे वहां हलाकत को, मौत को, सुबूर सबारा से। उस वक्त वहां उनका हाल क्या होगा कि वो अपनी हलाकत को पुकारेंगे, क्या ए अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह मौत दे दे, मरना चाहते हैं। इतनी गर्मी, फिर इतना प्रेशर, फिर इतनी आवाजें, इतना शोर, हम तो यहाँ नहीं रह सकते। फिर वो कहेंगे हाय तबाह हो गए। सबसे पहले कहते हैं कि शैतान है जो ये लफ्ज पुकारेगा, वाह सबूरा वाह सबूरा, हाय हलाकत हाय हलाकत। फिर इसके बाद इसके चीले चांटे जब वो पुकारेंगे, दुनिया में जब कोई इस तरह पुकारे तो फिर तरस आने लगता है, लेकिन वहां पुकारने वालों को क्या सुनाया जा रहा है, ला तदुल यौम सबूरन वाहिदा, मत मांगो आज एक मौत को बदबख्तो, चुप रहो, बल्कि वदु सबूरन कसीरा, बल्कि मांगो बहुत सारी मौतों को, एक मौत नहीं आ रही बाकी कहाँ आएंगी। मतलब क्या है, गुस्सा आएगा कि एक मौत मांगो या बहुत सारी मौतें मांगो, मौत तो नहीं आनी, और कुछ मांग लो। जरा सोचिए क्या होगा, आप कहते हैं कैसे देखेगी आग, देख सकती है ये आंखें मेरी और आपकी कैसे देखती है चीजों को, तो क्या आग नहीं देखेगी। उर्दू में हम नहीं कहते वो फला मस्जिद के मीनारे तुमको देख रहे थे, हकीकत में देखेगी। हमें इन चीजों की कोई तावील नहीं करने की जरूरत, और जो जाएगा मत मांगो एक मौत को, बहुत सारी मौतों को मांगो, ऐसे लोग जो हैं इनके पास कुछ भी तो नहीं। फिर वहां और तकलीफ देने को पूछा जा रहा है, कुल अजालिका खैरुन, क्या ये बेहतर है जाब, अम जन्नतुल खुल्द लती वुइदल मुत्तकून, या वो जन्नत जो दायमी है जिसका वादा परहेजगारों से किया गया। आज बताओ कितना तकलीफ दे मंजर होगा उनके लिए, जब है भी आग में और साथ ही तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जा रहा है कि बताओ फिर आज तुम अच्छे रहे या वो जन्नत में जाने वाले अच्छे रहे। अल्लाह, बताओ क्या अच्छा है, ऐसे लग रहा है कि आंखों से दिखाया जा रहा है। दोजख की हालत दिखाने के बाद अब उनको दिखाया जा रहा है कि तुम तो इधर पड़े हो, तुम्हें पता है वो कहाँ गए जिनका तुम मजाक उड़ाते थे, जिनको तुम बहुत बेवकूफ समझते थे, आज वो किधर गए हुए हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन वादा किससे था, मुत्तकून, और तुमसे बस यही तो ना हुआ, तक वही तो मुश्किल था, अल्लाह से डरते डरते जिंदगी बसर करना यही तो मुमकिन नहीं हुआ तुम्हारे लिए। कानत लहुम जज़ाउ व मसीरा, ये जन्नत इनके आमाल का सिला और इनकी जिंदगी का इंजाम है। मुश्किलें तो नहीं रही थी इनके नाम पे, वो पढ़ना पढ़ाना कौन सा रोज का था, वो नमाज रोजा हज ज़कात इखलाकियात मामलात कौन से रोज के थे, लेकिन आज देखो हमेशा की जन्नत उनके पास। लहुम फीहा मा यशाऊना खालिदीन, उनके लिए उसमें हर वो नेमत होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हर चीज और जिसकी ख्वाहिश, दो मुख्तलिफ चीजें आ गई ना। कान अला रब्बिका वादम मसूला, है ये उनके रब के जिम्मे, और हाँ है ये वादा आपके रब के जिम्मे जिसका पूरा करना लाजिम है। मसूला, ऐसा वादा जिसके पूरा करने का मुतालबा किया जा सकता है, यानी ना मिले तो कल आके क्लेम कर दो, या मसूल, मसूला जो क्लेम के मानों में आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये मिल के रहेगा, ना दिया तो आ जाना कल अल्लाह के पास। अल्लाह, मैंने तो तकवा के साथ जिंदगी बसर की, मैंने तो रातें दी इस कुरान को, मैंने तो दिन दिया, मेरे तो गर्मी सर्दी, मेरे बच्चे मेरा घर, मैंने तो अपनी खुशियां अपने गम क्या कुछ ना तुझे दिया, लेकिन आज जन्नत ही नहीं दिख रही, कहा हम फौरन पेश कर देंगे। मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह किसी से कोई वादा करे और उसको पूरा ना करे, मिल के रहेगा। इताद की जिंदगी चंद रोज की, और वादे पूरे हो रहे हैं हमेशा, कितनी बड़ी नेमत है। फिर कौन है जो ये थोड़ी सी कीमत ना देना चाहे उस हमेशा की जन्नत को पाने के लिए। लेकिन क्या करें, हमारा नफ्स और शैतान इतना जालिम है कि हमें हमारा भी मुफाद नहीं देखने देता, गलत काम करने देता है, गलत चीजों की तरफ लेके जाता है। अल्लाह, अब आगे फिर कुछ शिर्क की कबाखते हैं, क्योंकि आपको ये बात तो मालूम हो ही चुकी होगी ना कि जहन्नुम में जाने वालों की जो अक्सरियत है ना, ये शिर्क की वजह से जाएगी, और शिर्क ही वो गिरा है जो खुलती है तो दूसरे गुनाहों के मोती भी पीछे पीछे आने लगते हैं। अब देखिए कि ये बातें वही करेगा, वही मानेगा जिसका आखिरत पर ईमान है। इसीलिए यूमिनूना बिलगैब के बाद जो आखिरी बात की गई वो बिल आखिरति हुम यूकिनून थी। आखिरत पे यकीन ना आए ना, यकीन करें काम नहीं होता, ना फायदे के हसूल के लिए ना नुकसान से बचने के लिए। इसलिए इस्लाम इतना तस्करा करता है जन्नत और जहन्नम का। फरमाया वयौम यक्षुरुहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिस रोज मख्शर में अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा और इन बातिल खुदाओं को जिन्हें ये पूछते हैं अल्लाह के सिवा, फयकूलु अंतुम अदललती, तो पूछेगा अल्लाह उन माबूदों से क्या तुमने गुमराह किया था मेरे बंदों को, यानी मेरे इन बंदों को, अम हुम दल्लुस्सबील, या ये खुद ही सीधी राह से भटक गए। अब पूछा जा रहा है ये मुश्रिक जो तुम्हारी पूजा पाठ में लगे रहते थे, तुम्हारे नजराने पेश करते थे, तुमने कहा था कि हमारी पूजा करना, हमें बनाना, किससे पूछेगा ये अल्लाह ताला, जानबूझों से नहीं, जानदारों से, जिनको कहीं एक नाम से कहीं दूसरे नाम से लोगों ने जिंदगी भर भी बुजुर्ग बनाया और बाद में कब्र मरने के बाद उनको न जाने कुछ और बना दिया। और ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में नेकियां करते थे। पीछे इस पे बात हो चुकी कि कुछ लोग सारी जिंदगी तौहीद का पैगाम देते रहे, आज लोग उनकी कब्रों पे बैठे हुए। तो ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि बताओ क्या करते हो। यहाँ देखिए लफ्ज़ है मा याबुदून, मा और मन का फर्क पीछे हो गया, दोहराती इसलिए हूँ कि ताकि आपको ये बातें याद रहे कि मन तो जानदार होते हैं तो माँ तो बेजान होता है। तो फिर यहाँ माँ कहकर गैर आकिल माबूदों को कैसे पुकारा जाएगा? तो दो तीन इसके मुख्तलिफ मफहूम समझ लें कि यहाँ माँ मन के मानों में, दूसरी बात है कि माँ जो होता है ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए भी बोला जाता है। और फिर अगली बात है कि अगर बिल पर जहाँ पत्थर लकड़ी के बुत हैं तो अल्लाह उनको उस दिन अकल दे देगा, समझ दे देगा और सारी बातें ठीक है, कुछ भी हो जाए। बताओ तुमने क्या इनको कहा था कि हमारी पूजा करो? या अमहमदुल्लसबील, या असल बात तो यही दिख रही है कि खुद ही भटक गए। और यही बात कुरान पाक में बहुत जगह आती है, सूरत सबा की आयत 40-41 में भी आता है, वयौम यक्षुरुहुम जमीअन सुम्म यकूलु लिल मलाइकति, जिस दिन हम जमा करेंगे इन सबको, फिर फरिश्तों से पूछेगा अल्लाह ताला क्या ये लोग तुम्हारी ही बंदगी कर रहे थे? वो कहेंगे पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इनसे, ये लोग तो जिन्नों की बंदगी कर रहे हैं और अक्सर इन्हीं पर ईमान लाते थे। इसी तरह सूरत मायदा के आखिरी रुकू में भी हमने देखा था हजरत ईसा के नाते से। तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि फरिश्तों से भी पूछा जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पूछा जाएगा, और इसीलिए तो वो परेशान होंगे क़यामत के दिन कि आज मेरी उम्मत के शर्क पर मुझे कोई पूछ ना ले, कोई हमें पकड़ ना ले। तो बहरहाल माँ हो के मन हो, पूछ सबकी हो सकती है। जवाब सुनिए कि वो क्या कहेंगे। कालू, वो कहेंगे सुभानका, पाक है तू ए अल्लाह, किस चीज से? यानी ये जो आपके साथ हमें शरीक कराते थे। मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमें ये बात तो जेबा ही ना थी, जेब नहीं देती थी ये बात हमें कि हम आपके सिवा किसी दूसरे को वली बनाते, दोस्त बनाते। वलाकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम, लेकिन तूने आराम व आसाइश अता की इनको और इनके आबा को। हत्ता नसु ज़िक्र, यहाँ तक कि इन्होंने भुला दिया तेरी याद को। वकानो कौमा, और यूं वो लोग तबाह हो बर्बाद हो गए। देखिए दो वजूहात समझ आ गई शिर्क जिनकी वजह से फैलता है। एक है रिस्क की ज्यादती, अल्लाह ने रिस्क दिया शुक्र करें, ये खा पी कर नमक हराम हो गए। कम जर्फ लोगों का यही हाल होता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के भी मुखलस नहीं होते। इन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय मस्ती में अपने आप को पेश कर दिया। फिर दूसरी बात देखिए कि इसमें अल्लाह ताला ने जो ये वजह बताई कि इनके भटकने की वो क्या थी, इनके बाप दादा के तरीके। नाम बाप दादा का क्यों आ गया? जद्दी पुश्ती का लफ्ज सुना होगा आपने, यही मफहूम है इधर। यानी ये तो जद्दी पुश्ती नवाब थे, रईस थे, सेठ थे, शेख थे, बड़े खानदानी लोग बनते थे। और इसी में इनको चूके कोई थबेड़ा नहीं लगा, अज़मत तो हद तनसु ज़िक्र, क्या पता चला कि मुश्किलात आती हैं तो नसीहत याद आ जाती है, जिक्र से ताल्लुक जुड़ जाता है, फिर अल्लाह याद आता है ना। वकानु कौमन बूरा, ये तो हलाक होने वाली कौम है। बूर का लफ्ज जो है ना ये हलाकत के मानों में को बर्बाद होना। वाहिद जमा मुजक्कर और मुअन्नस, हर एक के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। बस ये भी कहते हैं कि ये बाहर की जमा है, जैसे आइस की आउस और हाइद की हूद जमा होती है। यानी बस इनके नसीब में तो अब हलाकत ही हलाकत है, बिल्कुल तबाह हो गए, सब भूल गए, कुछ इनके हाथ में नहीं रहा। फकत कज़ब तुम बिमा तकुलून, बस तुम्हारे माबूदों ने तुमको झुटला दिया जो तुम कहते हो। फमा तस्ततीउ नसरफुम वला नसरा, बस अब ना तो तुम अजाब को फेर सकते हो और ना तुम्हारी मदद की जाएगी। ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اور جس نے ظلم کیا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بڑا. اللہ کے نبی کے ذریعے اس دور کے بھی کفار اور ہر دور کے کفار کو کہا کہ تمہاری باتیں جھٹلائی جا چکی, یوں جھٹلا دیں کہ تم وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج کہہ رہے ہو. اس جملے کا ترجمہ لکھ لیں, وہ وہی پتے ہوا دینے لگے. کیا تشیر جس پہ تکیہ تھا, ہاں جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بالکل یاد رکھیں قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جو سوچے بیٹھے تھے نا وہ ہونا کچھ نہیں, وہی ان کی دشمنی کی باتیں کرنے لگ جائیں گے. کہ آپ بتاؤ کدھر گئے فلاں فلاں عالم اور فلاں بزرگ اور فلاں قبر والے جن کی امیدیں لگا کے جن کی نظر و نیاز دیتے ہوئے تمہاری زندگیاں گزر گئی, آج تو انہوں نے خود تمہارے خلاف باتیں کر دی. اب تو فلا تستطیعون صرفا, اب تو پھیر ہی نہیں سکتے صاحب کو. صرفن کیا ادھر صاحب کو پھیرنا, ولا نصر اور نہ مدد کی جائے گی. ہاں پھر جو کوئی ظلم کرے تم میں اس کو عذاب کبیر ہوگا. یہاں ظلم سے مراد پھر کیا ہوا, شرک بھی ہوا, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, اور ہر ظلم اس سے مراد ہے. اور پھر آخری آیت پارے کی بڑی خوبصورت, وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی تو کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تو تھے. یعنی یہ آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں ایسی باتیں بار بار دہرا کے, سب ایسے ہی تھے. آپ کے بعد آپ کے پہلے سارے انبیاء اور آپ سب جو ہیں وہ پہلے سے کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے تھے. اعتراض جو پیچھے تو اسی کا جواب ہے. حضرت نوح کو دیکھ لو, حضرت ابراہیم کو دیکھو, اسماعیل, موسیٰ, سب کو دیکھو, سب محنتی لوگ تھے, مانگ مانگ کے نہیں کھاتے تھے, غلط چیزوں کی طرف نہیں آتے تھے. ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات کر کے یہاں بیان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ, اصل کہانی کیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے باز کو باز کے لیے فتنہ بنا دیا. اللہ اکبر. اتصبرون, کیا تم صبر کرتے ہو؟ کیسے کروں صبر, دل بڑا دکھتا ہے. تو کہا وکان ربک بصیرا, اور آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے نا یہ, پیچھے میں نے آپ کو ایک آدھ دفعہ حوالوں میں کوٹ کرائی ہے, شاید آپ کو یاد ہوگا. یہ دنیا کا اصول ہے. اللہ کے نبی پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے, اور لوگ ڈھٹائی کے ساتھ آپ کو نہ جانے کیا کیا ثابت کر رہے تھے, کہیں مجنوں کاہن اور کہیں آپ کے اوپر شک کر رہے تھے. تکلیف تو بڑی ہوتی ہے لیکن کب کوئی بات نہیں, صبر کرو. اس لیے کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, ہم نے بعض انسانوں کو واقعی بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے. کبھی ساس بہو کے لیے آزمائش ہے تو بہو ساس کے لیے, بچے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ بچوں کے لیے, دوست دوستوں کے لیے, استاد شاگردوں, شاگرد استادوں کے لیے. دنیا کا اصول چلتا ہی ایسے ہے. یہ کائنات مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے, تضادات کا مجموعہ ہے. کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا, دونوں کی آزمائش ہے. دونوں گورا کالے کو دیکھے گا تو نفرت کرے گا, یہ ہے اس کی آزمائش فتنہ. کالا گورے کو دیکھے گا تو رشک میں چلا جائے گا, حسد میں چلا جائے گا, یہ ہے فتنہ. ایک ہے امیر, ایک ہے غریب. امیر غریب کو دیکھے گا تو حقیر سمجھے گا, یہ ہے اس کا فتنہ. اور غریب امیر کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا تو یہ ہے اس کا فتنہ. آپ اس ایک آیت کو لکھیں, آیت کے اس حصے کو لکھ کے جو بھی متوقع صورتحال آپ کو انسانوں میں رہتے ہوئے پیش آتی ہے نا, وہ نیچے لکھیں. یہ آیت بالکل اس کے وزن پہ پوری آئے گی. اور یہی ہے فرقان, فرق کے ساتھ پیدا کیا ہے. سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. سارے ہی اگر ایک جتنے دولت مند ہوتے تو کون غریب سڑکیں صاف کرتا, کون باتھ روم صاف کرتا, کون کوڑا اٹھاتا. यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मुआशी मसावात जो नहीं है ना दुनिया में, तो ये हिकमत है। बस लोगों ने सोशलिज्म के नाम पे ऐसी बातें की थी कि जो कमाओ सब हुकूमत को दो और हुकूमत सबको बराबर का बांट दे। बस आप नॉर्वे में रहते हैं ना, तो हुकूमत सबको एंड ऑफ द मंथ 10-10, 20-20 हज़ार दे दे, एक रकम रख ले और के जो सब इसी पे जिंदगी गुजारो। दुनिया का नाम चल ही नहीं सकता। कोई क्यों मेहनत करे, कोई क्यों हजारों कमाने के लिए मेहनत करे रात दिन, के मिलने उसको बाद में फिर 20 ही है। वो क्यों 25-30-50-100 हज़ार की बात करे, और दूसरा जो कुछ काम कर ही रहा था वो हाथ तोड़ के बैठ जाए, चलो मिल ही जाना है तो मैं करूं क्या। तो बताया गया कि अल्लाह ने फर्क रखा। ये चीज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, जहाँ हजरत उम्मे सलमा की रिवायत कोट कराई थी कि अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी है। फर्क है गनी के शुक्र का, गरीब के सबर का, अमीर की अमीरी का, गरीब की गरीबी का फर्क है। ये आजमाइश है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुलासा है आपकी बात का, कि जब कोई शख्स जिसके माल है या दौलत है तुमसे ज्यादा है, या सेहत में, कुव्वत में, इज्जत में, जाह में, मर्तबे में तुमसे बड़ा है, तो फिर तुम फौरन अपनी नजर उन लोगों पे डाल दो जो तुमसे कम हैसियत रखते हैं, ताकि तुम हसद के गुनाह से भी बच जाओ और अपनी मौजूदा हालत में अल्लाह का शुक्र करने की तौफीक हासिल करो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत का खुलासा है। तो ये है वो खुलासा जो आज अगर हमारी जिंदगी में तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लें, बस अब हम फौरन तकाबुल पे आ जाते हैं। हाँ, खुलासा तो हम कम है, हमारे पास नहीं है। याद रखिए, किसी को अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है ना, तो ये नेमत उसकी भी आजमाइश है, और आपको अगर वही नेमत नहीं दी तो आपकी भी आजमाइश है। क्यों रिवायत में आता है कि कुछ लोगों को अल्लाह अगर ज्यादा दे दे तो उनका दीन बर्बाद हो जाए, यानी तईशात में पड़ जाए। अल्लाह ने उनको काम इसलिए दिया हुआ है कि ईमान सलामत रहे। और कुछ कहा जाए कि अगर अल्लाह उनको थोड़ा दे दे, यानी आज बहुत दिया हुआ है, लेकिन अगर उनका माल दौलत छीन ले तो वो उनका दिन खराब हो, यानी वो मायूस हो जाए। कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं जिससे उनका ईमान खराब हो जाए। तो लिहाजा वजाल नबाद कुमली बाद फितना। एक मौके पे एक सास की बुराई करनी, बुराई से मुराद ये कि उनके कोई अमल की बात कर रही थी एक बहू, शिकवा था उनका बहू का कि मैं जो भी कोशिश करती हूँ ना अच्छा करने की, मेरी सास मुझसे खुश नहीं होती, मैं क्या करूँ। फिर इससे डिप्रेशन, दुख, तकलीफ। तो यही आयत फिर उनको पढ़ के बताई मैंने, वजाल नबाद कुमली बाद फितना, हमने बास को बास के लिए आजमाइश बनाया। मैंने कहा समझ ली आपकी आजमाइश है, मान जाए फिर क्या। आपको शादी से कितनी खैर मिली, बच्चे मिले, शौहर मिला, इज्जत मिली, स्टेटस मिला, तो क्या हुआ अगर एक सास अगर जुल्म थोड़ा कर भी देती है बिल फर्ज, तो क्या हुआ। अतस्बिरून, क्या आप सब्र करेंगी। और दिल नहीं चाहता ना सब्र करने को, क्या है नहीं मेरे पे तो वाकई बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहा वखाना रब्बु का बसीरा, तो रब नहीं देखा, उसको नहीं पता तुम्हारी सास तुम पे जुल्म कर रही है, या तुम्हारी बहू तुम पे ज्यादती कर रही है, तुम्हारा शौहर ज्यादती करता है, ना हक तुम्हें सताता है, और तुम्हारी बीवी तुम्हारी नहीं मानती। यकीन करें सारे नाराज लोगों की सुलह हो जाए सिर्फ ऐसे एक जुमले को सुनकर, वकान नारा भूखा। मेरा तो दिल नहीं भर रहा, दिल चाह रहा है मैं इस पे बहुत बात करूं कि तुम्हारा रब देख रहा है, गम ना करो, वो देखा बदले अलीमों पे जाते सदूर, वो है अल बसीर, वो है असमी, वो है। ए नबी, अगर आज मुनकरीन आपके लिए आजमाइश बने आपकी सरासर सच्चाई को, आपकी हिजरतों, आपकी कुर्बानियों को, आपके इखलास को, या गलत मानी देकर आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो करने दो फिर, ये तो होगा, आप सब्र कर लें। तो ये था 18वां पारा। सबक भी पूरा, पारा भी पूरा, अल्लाह अमल भी पूरा करवा ले। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.